ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने बिम्स्टेक को समावेशी विकास और सुरक्षा का एक मॉडल बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक देशों में कैंसर केयर प्रशिक्षण में भारत मदद देगा। शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और मुक्त। बैंकॉक दृष्टिपत्र 2030 को शिखर सम्मेलन में अंगीकार किया जाएगा और बिम्स्टेक प्रमुख व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट का भी अनुमोदन किया जाएगा। इस रिपोर्ट में बिम्स्टेक के लिए भविष्य की दिशाओं की रूपरेखा दी गई है। एक रिपोर्ट।
बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी में स्थित 7 देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक समूह है। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के 5 देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों को एक मंच पर लाता है। बिम्स्टेक वैश्विक जनसंख्या, GDP और बाहरी व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी दर्शाता है। भारत बिम्स्टेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के साथ भारत के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं जो भारत को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री ने आज शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग से मुलाकात की। बैठक में भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप के बाद हुए जानमाल की हानि पर एक बार फिर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत इस मुश्किल समय में म्यांमार की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका की 3 दिन की सरकारी यात्रा के दौरान श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए जवाबी आयात शुल्कों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा को आज 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, DMK और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। दूसरी ओर सत्तारूढ़ सदस्यों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान पर हमला बताने के बयान के लिए माफी की मांग की। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती के मुद्दों पर शोर शराबा करने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने को ऐतिहासिक बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इससे वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है तथा न्याय और समानता का युग शुरू हुआ है। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की पुष्टि करने वाले संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने आज तड़के से मंजूरी दी, लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए वे भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। दशकों तक भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता और अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।